وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورہ مائدہ کی آیت اور ہمارا اس ایام عذاب 1437 ہجرہ کے لیے سبجیکٹ اعلان غدیر کے تقاضے. لفظ بہت مشکل ہے لیکن آج کی مجلس میں تو ہم اپنے اس موضوع پر یا ٹاپک پر یا سبجیکٹ پر ڈائریکٹ بات کریں گے بھی نہیں, اور جب یہ بات شروع ہوگی تو اس مشکل لفظ کو میں اس وقت آسان کر کے سمجھا دوں گا. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہو کہ شیعہ, ہمارا سارا وجود باقی ہے غدیر کے اعلان کی وجہ سے. غدیر ہماری زندگی ہے, غدیر ہماری سانس ہے, غدیر ہماری رگ حیات ہے, غدیر اب تک ہمارے باقی رہنے کا سبب ہے. خالی خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم حکمرانوں ہی نے ہمارے خلاف تلوار نہیں چلائی پوری ہسٹری, حتیٰ یہ کہ اگر آج بھی آپ دیکھ لیجئے تو دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف, لیکن ہم باقی ہیں, زندہ ہیں اور ترقی کر رہے ہیں صرف اور صرف غدیر کی وجہ سے. اچھا, اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے, اس پر انشاءاللہ پوری ایک مجلس ہوگی آگے چل کر, لیکن فی الحال ایک جملے میں وہ کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے اس کو دور کر دوں کہ جو جملے میں نے غدیر کے لیے کہے یہ ہماری قوم میں کربلا کے حوالے سے مشہور ہے کہ بھئی کربلا ہماری زندگی, کربلا کی وجہ سے آج تک ہم باقی ہیں. کربلا نے یہ جو جنریشن یا سینچریز کا ہمارے خلاف بلڈ شیڈ ہو رہا ہے تو ہم کو بچایا, مگر خود کربلا کیوں ہو؟ 1437 ہجرہ کی پہلی مجلس کا بالکل شروع کا حصہ, خود کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ ظالموں کو اس میدان میں اترنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غدیر کی وجہ سے. آقا حسین کے دو ٹائٹل اور بھی, آقا حسین کا ایک ٹائٹل ہے شہید ولایت, اعلان ولایت کی وجہ سے آقا حسین شہید ہوئے, اور دوسرا لقب ہے قربان غدیر. لفظ قربان جناب زینب کے اس جملے میں ہے جو کربلا سے رخصت کے وقت آقا حسین کا لاشا دیکھ کر آسمان کی جانب اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ خداوندہ یہ ہمارے خاندان کا قربان ہے, یہ قربانی. تو آقا حسین خود کربلا میں اتنا بڑا جہاد غدیر کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر غدیر کا اعلان نہ ہوتا تو کربلا کا واقعہ بھی پیش نہیں آتا. یہ تو میں نے صرف اس لیے ابھی سے کہہ دیا کہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو کہ غدیر کے بارے میں جو بات میں نے کہی یہ تو کربلا کے بارے میں کہنا چاہیے, نہیں, اصل واقعہ غدیر. مگر میرا سوال یہ کہ غدیر کے اعلان کو کیا ہم نے, ہم غدیری بلکہ اس کائنات میں پوری یونیورس صرف اکیلے ہم غدیری ہیں اور کوئی غدیری نہیں, کیا ہم نے غدیر کے اعلان کو کبھی سمجھا بھی ہے؟ کبھی یہ غور بھی کیا ہے کہ غدیر میں کہا کیا گیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن ہو کہ حدیث, اس میں جتنے بھی اگر مگر لیکن یعنی اف اینڈ بٹس آتے ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا, میری مجالس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ میری مجلس میں अगर बहुत होता है, मगर बहुत होता है, लेकिन बहुत होता, यानी इफ एंड बट्स। बल्कि अभी अभी एक महीना भी नहीं हुआ, मीना के मैदान में हज की आखिरी जो मजलिस में पढ़ता हूं, उसमें एक साहब बहुत गौर से, बिल्कुल पता नहीं कौन से इलाके के थे, बहुत गौर से खड़े हुए सुन रहे थे और कोई चीज अपनी उंगलियों पे काउंट कर रहे थे। आइए आगे तशरीफ लाइए मौलाना। तो मेरा तो खैर अब बुढ़ापा है, आखिरी आखिरी उम्र है, अब तो मेंबर भी ऐसा होता है कि उसके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस एज में। गदीर का मेंबर भी हमारा मौजू बनेगा, गदीर का मेंबर कैसा था, और ये कि नौजवान उलमाए कराम को देखकर भी ये जहन में जुमला आया। तो काउंट कर रहे थे कुछ मजलिस में खड़े हुए, मीना के मैदान की जो आखिरी रात होती, जिसको नतीजे की रात कहा जाता है, जिस रात को यह फैसला होता है कि किसका हज अल्लाह ने कबूल किया है और किसका हज कबूल नहीं किया, जिस रात को दो फरिश्ते आके एक एक हाजी का चेहरा देखते हैं और फिर ये कहते हैं कि हाजा हाज व हाजा लैसा बेहाज। कुछ लोगों को देख के कहते हैं कि ये हाजी, और ज्यादातर लोगों को देख के कहते हैं कि ये हाजी नहीं। उस रात की एक मजलिस जो तकरीबन 35-40 साल से मैं पढ़ता हूं, तो एक साहब बाकायदा काउंटिंग कर रहे थे और हर थोड़ी देर के बाद उछल के अपने साथी से कुछ कहते थे। तो जो हमारा ग्रुप ऑर्गेनाइजर है वो जरा परेशान हुआ कि ये कौन साहब है और क्या कर रहे हैं। तो कहा कि आप क्या कर रहे हैं, कहा कि ये आवाज सुन के हम आ गए, हम तो बहुत दूर दूसरे टेंट में थे, ये आवाज हमें उन साहब की लगी जो अगर मगर और लेकिन बहुत कहते हैं, और मैं काउंट कर रहा हूं इस मजलिस में अब तक कितने अगर और लेकिन आए और आए हैं, वो बाकायदा उन्होंने गिनती करके बताए। लेकिन मुझ जैसे जाहिल की तकरीर में अगर मगर लेकिन छोड़िए, कुरान कलाम मासूम, वहां पर जब इफ एंड बट्स आ जाए तो उनकी अहमियत बहुत। इफ एंड बट्स का मतलब ही यह है कि पूरा पैगाम उल्टा हो जाता। चुनांचे मुझे याद है कि इससे पहले जब मैंने जाफरी सेंटर में जो आखिरी मजालिस पढ़ी थी शहजादी कौनैन की सीरत के हवाले से, तो उसके अंदर जिस आयत पर मैंने बात की थी उसमें भी यह बात बहुत तफसील के साथ बताई गई कि जी हमारी कौम में एक बात बहुत मशहूर है, बल्कि इतनी ज्यादा मशहूर है कि ऐसा लगता है कि अल्लाह ने यह बात इसलिए कुरान में कही है ताकि नऊज़ु बिल्लाह, ये बतौर मिसाल फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, कि ऐसा लगता है कि अल्लाह ने यह बात कुरान में इसलिए कही ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा गुनाह करने का मौका मिले, प्रोमोशन ऑफ गुनाह के लिए लफ्ज कुरान में आया। क्या चीज मशहूर है कि अल्लाह, भाई अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह की मर्सी, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी, ये कयामत के दिन मौलवी लोग कोई थोड़ी हिसाब किताब करेंगे, रहमान और रहीम अल्लाह हिसाब किताब करेगा। और ये जैसा मैंने कहा कि ये बात इतनी मशहूर हो गई कि किसी भी गुनाहगार से पूछो ये गुनाह क्यों करते हो, वो कहता है इसलिए कि अल्लाह रहमान और रहीम। शराब क्यों पी रहे हो, अरे अल्लाह रहमान और रहीम है, वो तो बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता। किसी मोमिन का हक क्यों मार रहे हो, इसलिए कि अल्लाह रहमान और रहीम। नमाज क्यों कजा कर रहे हो, इसलिए कि अल्लाह रहमान और रहीम। ये तुम्हारे घर की औरतें बेहिजाब घर से बाहर क्यों निकल रही, अरे अल्लाह रहमान और रहीम। गुनाहाने कबीरा करो, बड़े बड़े गुनाह करो, जानबूझ के करो, और उसके बाद चले गुनाह हो जाता है कभी बाय मिस्टेक, कभी इग्नोरेंस की वजह, कभी जानबूझकर होता है, लेकिन फिर आदमी अपने उस गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस करता है, फीलिंग ए काइंड ऑफ एम्बेरेसमेंट, जैसे कल दुआए कुमैल में आप सुनेंगे शबे जुमा। लेकिन ये कुछ नहीं, गुनाह भी करो और उसके बाद अपने गुनाह पर जम भी जाओ और सिर्फ ये एक्सक्यूज लेकर आओ कि अल्लाह रहमान और रहीम। यानी अगर अल्लाह कुरान में रहमान और रहीम की बात नहीं करता तो हम शराब से अपने आप को बचा लेते और हम नमाजें रेगुलर पढ़ते और हमारे घर की औरत अपना हिजाब भी कर लेती और हमारे मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी भी नजर आ जाती। ये दो तीन जुमले मैंने इसलिए कहे ताकि कन्फर्म हो जाए कि सादिक हसन नमाज पढ़ रहे हैं, मजलिस पढ़ रहे हैं, उनकी मजलिस और दाढ़ी का जिक्र ना है, उनकी मजलिस और हिजाब का जिक्र ना है। लेकिन लेकिन बड़े बड़े गुना, ये छोटे गुना, छोटा गुना भी कभी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये आज की मजलिस का टॉपिक नहीं। तो अब बड़े बड़े गुना, अगर अल्लाह अपनी रहमत का ऐलान न करता तो हम अपने आप को गुना से बचा। अल्लाह अपनी रहमत बता के गुनाहों को प्रमोट कर रहा है, नऊज़ु बिल्लाह। कभी कभार कुछ लोगों का, कुछ मोमिनीन का स्टाइल ये होता। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले जो लास्ट टाइम मैंने जाफरी सेंटर का विजिट किया था, उस वक्त पहली मजलिस में अर्ज किया कि अल्लाह ने कुरान में ये ऐलान भी कर दिया कि मैं रहमान और रहीम तो हूं, लेकिन हर एक के लिए नहीं हूं। मेरी रहमत बट के साथ है, मेरी रहमत इफ के साथ है। सूरह निसा की वो आयत, जिस आयत से पहले वाली आयत 64 आज शायद हमारी मजलिस में आधी मजलिस के बाद आए, क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट वही है, उसके बाद की आयत 65। और इसका एक रेफरेंस ये भी है कि यकीनन इस मजमे में भी कुछ लोग होंगे जो इसी साल हज करके आए होंगे। हर साल हाजी हो या उमरा करके आने वाला हो, ये आयत तो उसको अच्छी तरह से याद होती, क्योंकि ये वाली आयत कुरान में तो है मगर रसूल खुदा की जियारत का पाठ बनाकर हर उस मोमिन को जो जियारत के लिए मदीने गया है, चाहे हज पे गया हो चाहे उमरे पे गया हो, यह आयत पढ़वाई जाती। और ड्यूरिंग हज और उमरा रसूल खुदा की जियारत आदमी सिर्फ एक बार नहीं पढ़ता, सुबह पढ़ता है, दोपहर पढ़ता है, शाम पढ़ता है, रात पढ़ता है, जितनी मर्तबा हरम में जाता जियारत पढ़ता है तो यह आयत पढ़ता। और वो आयत क्या है जिसके अंदर अल्लाह ने अपनी रहमत का कुरान में जहां जहां ऐलान किया उसकी एक बहुत अहम कंडीशन बता दिया, इफ के साथ या बट के साथ। ये गुनाहगार अल्लाह को रहीम पाएंगे, अल्लाह रहीम है इन गुनाहगारों के लिए। लेकिन वो लेकिन आ गया, आप भी अगर काउंट करना चाहें तो काउंटिंग शुरू करें, लेकिन कंडीशन ये है, क्या रसूल ये तेरे पास आए और तू इनके हक में दुआ करे। अब देखिए रहमत, रहमत का कंसेप्ट ही कुरान ने चेंज कर दिया। अल्लाह हर एक के लिए रहीम नहीं है, अल्लाह उनके लिए रहीम है जो रसूल के पास आएंगे और रसूल को अपने और अल्लाह के बीच में एक वसीला और एक वास्ता बनाए, तब अल्लाह रहीम है। अब ये पहले गुनाहगार कहता है कि अल्लाह रहीम, मैं हर गुनाह कर सकता हूं, रसूल को राजी करना, रसूल को खुश करना, ये एक इफ या बट आ गया। अब इस आयत पर चूंकि मैं 7 दिन अपने लास्ट विजिट में बात कर चुका हूं तो मजीद बात नहीं करता, मैं तो गदीर खुम के हवाले से बात कर रहा हूं। गदीर खुम में ये जो ऐलान है कि फहाजा अली मौला, ये अली मौला, मगर उससे पहले क्या कहा गया, अली हर एक का मौला नहीं, अली हर एक के लिए मौला नहीं, अली हर एक का मौला है लेकिन अली की विलायत उसे मिलेगी जो इससे पहले एक शर्त है, मन कुन तो मौला। पैगंबर ने कहा पहला मौला मैं हूं इंसानों में, अल्लाह तो है ही वली, लेकिन जिसका मैं मौला हूं उसके लिए अली मौला। रसूल की विलायत को पहले मानना, विलायत रसूल, विलायत रसूल, इसके बाद फिर विलायत अली आ रही। तो रसूल की विलायत पहले और विलायत रसूल के हवाले से एक ऐसी बात अर्ज करना है आज के दिन जिसमें इतने सारे इस्लामिक हिस्ट्री के वाकयात मेरे जहन में हैं और आप हजरात ने उसमें से कुछ चीजें मेरी मजलिसों में सुनी भी हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट करके बात को फैलाने का फायदा नहीं है। विलायत रसूल पहले, यानी असल विलायत इंसानों, अल्लाह की विलायत को छोड़ रसूल की है, उसके बाद उस विलायत रसूल के नतीजे में विलायती अली हमारे सामने आती है। और विलायत रसूल का पहला रिक्वायरमेंट, पहला तकाजा, ऐलान गदीर के तकाजे, पहला तकाजा विलायत रसूल का ये कि जो रसूल कह लें, जो रसूल कह दें, जो रसूल डिसीशन ले लें, जो रसूल हमें ऑर्डर दे दें, कोई वाय नहीं चलेगा, आंखें बंद करके ब्लाइंडली उसको फॉलो करना। आजकल हमारे यंगस्टर और यूथ वो तो हमारी मजलिसों में आते नहीं है ड्यू टू द कम्युनिकेशन गैप, उनके लिए तो हमारे काबिल एहतराम शेख अब्बास पंजू साहब इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं, लेकिन वो मजलिसों में नहीं आते हैं, फिर भी उनका एक स्टाइल होता है इस्लाम को समझने का कि जी इस्लाम की वो चीज उनको चाहिए, या ये कहिए कि वो इस्लाम को इस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भाई इस्लाम में ये हुक्म आया, इसका फायदा क्या है, और वो फुला चीज जो इस्लाम ने बताई है, आज की दुनिया तो कह रही है कि उसके इतने नुकसान हैं, जो वाजिबात हैं उसके नुकसान। मसलन छोटी सी बात, जिस इलाके से मैं आ रहा हूं वहां पे मीडिया में या गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जब हमारी कोई औरत किसी डॉक्टर के पास जाती है कोई बीमारी, बहुत ही कैजुअल वे में डॉक्टर कहता है कि ये आप जो हिजाब पहनती है ना, ये सारा प्रॉब्लम इसकी वजह से, सनलाइट नहीं मिलती है और फोला विटामिन डी की कमी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या फजूल बातें, कि ये जो आपके सर जो हर वक्त आप अपने जिस्म को सनलाइट से बचाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर का रेशो भी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वह इससे हटकर ये बात कहते हैं कि ये हिजाब, ये इसके इतने सारे नुकसान हैं कि आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। मैं हिजाब के हवाले से जो दूसरा प्रोपेगेंडा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं कि नुकसान ढूंढ के निकाला जा रहा हूं। और इसी तरह इसके उलट भी, जो चीजें इस्लाम में हराम हैं आजकल उसके बेनिफिट सामने आ रहे हैं, और तो और शराब जैसी चीज, और उसके भी बहुत सारे बेनिफिट बता दिए गए। रेड वाइन के बगैर कुछ लोगों का खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता, इतनी जनरेशन गुजर गई दुनिया की, पता नहीं उनके खाने कैसे हजम होते थे, लेकिन अब ये आजकल एक चीज निकली। म्यूजिक, म्यूजिक के कितने फायदे आजकल सामने आ रहे हैं। ऑल दो एक पॉइंट मैं जरूर मेंशन करूंगा कि दो अलग अलग चीजें हैं इस्लाम में, हराम जो है वो सिंगिंग सॉन्ग, म्यूजिक हमेशा हराम नहीं, लेकिन बहरहाल हमारे यहां इंडिया पाकिस्तान में इसको मिक्सअप कर देते हैं, और आज इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके अपना पॉइंट आपको समझाऊं। तो गाना बजाना या म्यूजिक, आजकल इसके बहुत सारे बेनिफिट सामने आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं कि जो बेस है इसी म्यूजिक के ऊपर। अब लंबी चौड़ी लिस्ट आज की पहली मजलिस में बताने का फायदा नहीं कि शराब हो या म्यूजिक हो या और जो चीजें इस्लाम ने हराम की उनके फायदे सामने आते हैं। जो चीजें वाजिब की हैं, कहा नहीं वो फला वाजिब में तो ये नुकसान है और फला वाजिब में तो ये नुकसान है, और कभी कभार ह्यूमन एरर कहिए या प्री प्लान मंसूबा, लेकिन जैसे हज में ये स्टैम्पेड हो गया, उसकी वजह से खुद पूरे हज के सिस्टम पर एतराज, बहुत सारी चीजें। तो अब ये आज का यूथ, आज के यंगस्टर, उनका पहली उनकी डिमांड ये होती कि जो इस्लाम के वाजिबात हैं इसके फायदे बताइए, बेनिफिट क्या, और जो इस्लाम की हराम चीजें हैं इसके नुकसान बताइए। और अगर कभी 21st सेंचुरी की रिसर्च ने उल्टा काम किया, यानी वाजिब का कोई नुकसान सामने आ गया, हराम का कोई फायदा सामने आ गया, तो और ज्यादा वो जरा सा इस्लाम के बारे में डाउटफुल हो जाते हैं, जबकि इस्लाम तो नाम इसी चीज का है कि जहां 100% नुकसान हो। कोई रिसर्च ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि फला चीज में 100% नुकसान, वो हमेशा कहते हैं चांसेस ज्यादा, लेकिन इस्लाम तो कहता है 100% कंफर्म है कि इस चीज में नुकसान, लेकिन रसूल ने कह दिया आंखें बंद करके मानना, ब्लाइंडली फॉलो करना, आखिर में जाके करबला का जिहाद मंजिले शहादत 100% यकीन है कि जान जाना ही जाना। अलबत्ता शहादत दीन को फायदा पहुंचाती है लेकिन दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर इमाम ने कह दिया है तो चाहे 100% यकीनों के नुकसान है उस पर अमल करना ही करना। कभी आपके पास ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि इस्लाम के वाजिबात का फायदा हो, क्योंकि अक्सर लोग दाढ़ी के बारे में यही बात कहते हैं कि मौलाना दाढ़ी के कुछ बेनिफिट बताइए, हम अभी रख लेंगे दाढ़ी। अगर बेनिफिट छोड़ें 100% श्योर हो जाए कि इसके नुकसान भी हैं, यानी सबके लिए जर्नलाइज किस्म के नुकसान, तब भी वो रखना। क्योंकि गदीर के ऐलान का पहला हिस्सा मन कुन तो मौला, पहले मेरी विलायत को मेरे मौला होने को मानो, मैं तुम्हारा मास्टर और तुम्हें इस तरह से मेरे ऑर्डर्स को मानना है जिस तरह ज़ुश्शहादतैन ने माना था। पैगंबर के एक बहुत मशहूर साहबी, शुरू में जब मैं इनकी स्टोरी पढ़ता था तो 50 मिनट में तो खाली इनकी स्टोरी कंप्लीट होती थी, लेकिन चूंकि अब इतना ये वाकया पढ़ लिया गया है कि आप में से हर एक को बाई हार्ट याद होगा, तो बहुत समराइज करके उसका नतीजा और गदीर के ऐलान से उसको मैच करना और फिर हमारी गुफ्तगू मौला की विलायत पे शुरू होगी। लेकिन पहले ये समझिए कि खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी, पैगंबर के एक ऐसे साहबी जिन्हें मौला ने नहजुल बलागा के खुतबे में याद किया, जो मौला का वो टाइम पीरियड जब दुनिया ने, दुनिया को छोड़ उन मुसलमानों ने जिन पर और जिनके बच्चों पे अली ने एहसान किया, अली से इस तरह से मुंह फेर लिया, अली को इस तरह से इग्नोर करने लगे। ये लफ्ज इग्नोर जन्नतुल बकी की जियारत की दुआओं में आया, तो इस तरह से मुंह फेर लिया कि उस रास्ते पे लोग नहीं चलते थे जिस रास्ते पे मेरा मौला चल रहा। क्यों? रीजन क्या था कि हम तो अली को सलाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर अली ने सलाम कर लिया तो कहीं अली को जवाब ना देना पड़े, वो अली के सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं। जब वो हालत थी तो मौला ने कभी कुएं में मुंह डाल के अपनी फरियाद, बहुत ही मशहूर वाकया और मीसा में तमाल की रिवायत, और आज भी शहर कूफा नजफ के दरमियान वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है, बल्कि नजफ के अंदर है वो कुआं, मौला फरियाद कर रहे हैं कुएं में मुंह डाल के। और कभी कुछ खुतबात में मेरे मौला ने इस तरह से कंप्लेन की कि एक खुतबे के अंदर पैगंबर के चंद सहाबियों को याद किया और उसमें यह था, ऐना ऐना इब्न तिहान, कहां है, कहां है पैगंबर का वो सहाबी, कि आज अगर ये होते तो इस अंदाज से अहले बैत पे जुल्म न होता। जरा सोचिए, मुश्किल कुशाए कायनात, मौलाए कुल, जिसके हाथ में सारी कायनात की ताकतें हैं, वो अगर इन लोगों को याद कर रहा और कह रहा कि ये लोग मेरी मदद के लिए होते तो इतना जुल्म न होता, इन असाबे रसूल का स्टेटस कितना हाई होगा। हम इतना, हमारे पास टाइम ही नहीं कि कभी हम असाबे रसूल और असाबे इमाम में उन वफादार साहबियों को याद करें जिनके लिए अजीब अंदाज से मासूमीन ने प्रेस किया, तारीफ की। मौला का जुमला कितना बड़ा, या जैसे इमाम मासूम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम असहाबे इजमा में से कुछ के बारे में जुमला इरशाद फरमाया। अब ये मौला का वाकया छोड़कर मैं इस जुमले की जानिब क्यों आया हूं, सिर्फ एक जुमला इसलिए कि इस जुमले पर बेस करके इस अशरे में कम से कम एक या दो मजालिस पढ़ी जाएंगी। इमाम का जुमला असहाब इजमा में से कुछ, 18 मासूमीन अइम्मा के शागिर्द ऐसे, एक असहाब रसूल है वो अलग कैटेगरी, एक मासूमीन के असहाब अइम्मा के असहाब, 18 असहाब इजमा है, एक रफ फिगर जो इतने मोतबर हैं कि अगर कोई हदीस वो कोट करे तो इसके बाद फिर ये चेक नहीं किया जाता है कि और कौन रावी है जो इन्होंने कह दिया इतने सच्चे कि इनका कहा हुआ फरमान कभी गलत नहीं होता। उनमें से एक जुरारा मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, और छठा इमाम कह रहा है लो ला अम्सा लो हाओ ला लन दरसत आसारुन नबुवा, अगर ये मेरी मदद ना करते तो नबी के सारे आसार दुनिया से मिट जाते। इमाम, हर इमाम मुश्किल कुशा, हर इमाम मौलाए कुल, और वो गैरे इमाम और गैरे मासूम, और वो जुमला बढ़ा दूं जिसकी वजह से मैंने ये हदीस पढ़ी, हम जैसे इंसान, मौला की सीरत को कोई वाकया पेश आ जाए आप एक जुमला कहेंगे और सही भी, अली कहां हम कहां, शहजादी की सीरत को कोई वाकया पेश आ जाए हमारी औरतें एक जुमला कहेंगी और सही कहेंगी, अरे कहां शहजादी है कौन है कहां हम जैसे गुनाहगार। लेकिन ये जिनका मैं तस्किरा बीच में शुरू कर बैठा, ये हमारी आपकी तरह से गैर मासूम आम घरानों में पैदा हुए, लेकिन इतना हाई स्टेटस पाया कि कभी मौला कहें कि अगर वो होते तो आज हम पर इतने जुल्म ना होते, और कभी छोटे इमाम कहें कि मैंने जो दीन को बचाया और ऐसा बचाया कि शियत का दूसरा नाम है दीन जाफरी, फिक का नाम है फिक जाफरिया का, इनकी मदद से बचाया, और ये फर्स्ट कंसेप्ट था मर्जियत इश्तिहाद और तकलीद का, जिस पर हमें आगे बात करना है। आजकल इश्तिहाद और तकलीद इतना ज्यादा अंडर अटैक है कि खुद समझ में आ जाता है कि जब दुश्मन इतना प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ कर रहा तो कोई ना कोई इसके पीछे इतना बड़ा ट्रुथ या फैक्ट है शियत की मदद के लिए, क्या जिसे देखिए खड़ा होता है बच्चे बच्चे, बल्कि बच्चे ज्यादा, और कभी मर्जे के खिलाफ, कभी इश्तिहाद के खिलाफ, कभी तकलीद के खिलाफ, और कभी अगेंस्ट नहीं, लेकिन इस तरह का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि गोया इश्तिहार तो तकलीद एक खेल बन जाता है, लेकिन आज नहीं। तो यह असहाब इमाम, ये वो चेन की सबसे पहली कड़ी जहां से इश्तिहार तो तकलीद शुरू होकर आयतुल्लाह सिस्तानी और आगा रहबर आगा खामेनाई तक पहुंची है। मासूमी इमाम अपने शागिर्दों को और अल्लाह के रसूल के सहाबी मौलाए कायनात उनको प्रेस कर रहे हैं, उनमें से एक साद इब्ने माज़ है। मैं मौजू से ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहता, लेकिन सिर्फ यही एक जुमला कि अगर वो जिंदा होता तो मजाल थी किसी की कि हमारा हक खिलाफत छीनता, कि मौला का जुमला हमारे जहन में साद का मिसकंसेप्ट आ गया सिर्फ इसलिए कि उन पर अजाब कब्र आया था, वो अपनी बीवी के साथ एटीट्यूड या बिहेवियर में अच्छे नहीं थे। ये अजीम अजीम साहबी तो खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी, जिन्हें मौला ने नहजुल बलागा के खुतबे में याद किया, और किस तरह याद किया, इसे सलमान फारसी को भी याद किया, लेकिन ये कह के कि अल्लाह रहमत नाजिल करे उस नेक बंदे पर, उस तरह नहीं कहा। ऐना ऐना कहां है ये साहबी आज इस दौर में मेरी मुश्किलात को देखते, जो क्राइसिस पीरियड है, और ये मेरी हेल्प के लिए होते, इस तरह से याद किया। मगर उनकी सारी जिंदगी देख डालिए, जिन्हें मौला याद कर रहे हैं एक ही क्वालिटी उनमें नजर आ रही है, और ये है कदीर के हवाले से सबसे पहले हमसे डिमांड, पहली डिमांड यही, एक ही क्वालिटी नजर आ रही। अब वाकई आप समझ गए, मैं वाकई आप पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस स्टेज पर मजलिस आ गई है तो थोड़ा सा इशारा करना होगा। अल्लाह के रसूल शहर मदीना के बाहर किसी काम से गए, वापस आ रहे हैं, पैगंबर मदीने की जानिब जा रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं सवाल हज में करता हूं, लेकिन यह हज नहीं है और आपके सामने इस वक्त मक्का और मदीना नहीं है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मक्का शहर हजरत इस्माइल और उनकी मां जनाब हाजरा ने बनाया, स्टार्ट उन्होंने किया, बल्कि हाजरा, इस्माइल तो गोद के बच्चे थे। तो जो बिल्कुल सिटी सेंटर है खाना काबा, उसके करीब जनाब हाजरा का घर था, बल्कि वो जो एक सेमी सर्कुलर वॉल है उसके अंदर, मगर रसूल अल्लाह का बर्थ प्लेस जाके देखी तो करीबन उस जमाने के मक्का के आखिर में जिन्होंने शहर बनाया और उनका घर भी वहीं पर था, वो सिटी सेंटर से इतना दूर कैसे चले गए? एक तो जैसे हमारे यहां हमारे सिटीज में होता है, बहुत क्राउडेड हो गया, कंजेस्टेड हो गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, गंदगी बढ़ गई, तो जो नए एरिया बनते हैं उसमें आदमी जाता, ऐसा तो नहीं था। उसका एक रीजन, मदीना शहर जब रसूलुल्लाह आए तो ऑलरेडी एक बहुत पुराना शहर था, बल्कि एक मजलिस मदीना शहर पर भी इसलिए होगी कि मदीना इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड जो रसूल अल्लाह के लिए बनाया गया कि आखिरी जमाने में एक रसूल आएगा, और फिर वो मदीना रसूल के अगेंस्ट हुआ। जैसे हम और आप आखिरी इमाम का इंतजार कर रहे हैं ना, तो रसूल अल्लाह के आने से पहले अहले किताब रसूल अल्लाह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये हिस्ट्री बाद में आई। मदीना शहर जब रसूल अल्लाह आए तो ऑलरेडी सेंचुरीज पुराना शहर, मगर वहां रसूल अल्लाह का घर बिल्कुल सिटी सेंटर में, तो वो तो हर एक को मालूम है। लेकिन एक सवाल है कि मक्के और मदीने में इतना फर्क कैसे हो गया? जो मक्के में होना चाहिए वो मदीने में हुआ, कि बनी हाशिम को होना चाहिए मक्के के सिटी सेंटर, और जो मदीने में होना चाहिए वो मक्के में हुआ। लेकिन खुलासा यह है कि रसूल मदीने के सिटी सेंटर में रहते, चुनाचे रसूल के घर जाने के लिए आपको मार्केट में से गुजरना पड़ेगा। तो पैगंबर के आगे आगे एक यहूदी बिजनेसमैन जा रहा, उसका काम है कारों का, कार का काम है। उस जमाने की कार होती है घोड़ा, घोड़ा उस जमाने की गाड़ी यही है, बेहतरीन घोड़े भी होते हैं जैसे मर्सिडीज वगैरह होती है, और थर्ड क्लास भी होते हैं, हर किस्म के होते हैं। तो उस जमाने के कार के बिजनेस का मकसद है कि घोड़े। अब तो आप अमेरिका में आ गए, किसी आलिम के पास आपको गाड़ी नजर आ जाए या कार तो आपको ताज्जुब नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान में आज भी लोग कहते हैं कि उलमा का काम है पैदल चलना, उसके पास अगर कोई कार या गाड़ी आ गई तो पहला ख्याल आता है कि ये हमारे खुम्स से दी गई। अच्छा तुमने कितना खुम्स दिया? 100 रुपए दिए। अच्छा 100 रुपए के अंदर ये 2 लाख की गाड़ी। लेकिन खैर, अब वो तो शैतान बहुत तरह से बहकाता है, इश्तिहाद और तकलीद पर जो मजलिस होगी उसमें मजीद इसकी डिटेल आएगी। लेकिन मासूमीन में से हर एक के पास घोड़े थे और एक नहीं कई घोड़े, और हर एक के पास ऊंट थे और एक नहीं कई ऊंट थे। पैगंबर ने देखा कि आगे आगे एक यहूदी बिजनेसमैन जा रहा है जिसका घोड़े का काम, और बेहतरीन एक घोड़ा लेके वो जा रहा है मार्केट में बेचने के लिए। अब मैं तो आज भी ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है मेरे पास, तो मुझे कार के बारे में नहीं पता। यूथ को बड़ा क्रेज होता, तो अब कौन सी ज्यादा मशहूर गाड़ी है? हमारी एज के एतबार से मर्सिडीज ही को हम लोग बहुत अच्छा समझते हैं। लोग कहते हैं वो तो बुढ़े लोगों की गाड़ी है, तो बुढ़े जवान की बहस छोड़िए। खुलासा यह है कि बेहतरीन घोड़ा, पैगंबर ने उसको रोक लिया, कहा बहुत अच्छा है, मैं खरीदना चाहता हूं, क्या कीमत? नेगोशिएशन हुआ, तय हो गया सिर्फ इतनी सी बात, डन डन, पेमेंट मदीने पहुंच के होगा, इतना कैश तो उस वक्त भी कोई लेके नहीं चलता। अब वो जो बिजनेसमैन है बड़ा खुश, भाई ये इतना कीमती घोड़ा, एक्सपेंसिव कार लेके गया, ये एक्सपेंसिव कार रोजाना नहीं बिकती, पता नहीं कितने दिन में मदीने जाता तब जाके ये गाड़ी बिकती, यहां तो मार्केट में एंटर होने से पहले सौदा हो गए। बहुत खुश, तो वो खुशी के आलम में तेज चल रहा, मार्केट में पहले पहुंच गया, एंड ऑफ द मार्केट रसूलुल्लाह का घर मस्जिदुन नबवी, पैगंबर पीछे आ रहे हैं। अब जब वो घोड़ा लेके मार्केट में गया तो हर एक कोई घोड़ा पसंद आ गया, लोगों ने रोक लिया, कहा कि भाई ये कितने का दोगे। अब यहां का माहौल छोड़िए, इंडिया और पाकिस्तान, तो अब लोगों ने खुद प्राइस ऑफर करना शुरू की जब वो खामोश रहा, और अब जो प्राइस आने लगी वो रसूलुल्लाह की प्राइस से ज्यादा थी। तो लालच तो हर इंसान में आ जाती है। उसने सोचा कि मसलन 1 मिलियन की ये चीज मैंने बेची है, 1.5 मिलियन का ग्राहक सामने खड़ा, वो खुद से ऑफर कर रहा। पैसे की मोहब्बत तो बहुत बुरी मोहब्बत, हम उसे क्या कहेंगे, वो तो नॉन मुस्लिम था। या मोमिन को देखी, शहजादी का कलमा पढ़ने वाले को देखी, शहजादी के नाम पे जान देने वाले को देखी, खुम्स के नाम पे $10 देते हुए भी जान निकलती। बहुत सारे लोग आजकल खुम्स देने लगे, लेकिन स्टिल हमारी कौम की मेजोरिटी आज भी खुम्स नहीं देती, जबकि खुम्स के बारे में हरेक को पता है ये हक़े फातिमा, खास शहजादी की औलाद के लिए अल्लाह ने इसको रखा। बल्कि अजीब बात, अहले बैत एलान गदीर मन कुन तो मौला करबला, ये सारी चीजों से आज की मजलिस शुरू हुई थी ना। कहा इसको मानते हो? मानते। इसके लिए क्या कुर्बानी दोगे? कहा जान दे देंगे, औलाद दे देंगे। तो भाई $100 में $20 दे दो। कहा कैश नहीं देंगे, जान ले जाइए, औलाद ले जाइए। आज भी खुमस के नाम पर लोगों के पास कितने एक्सक्यूज होते हैं, जिनमें एक एक्सक्यूज आगे जाके मर्जियत के अगेंस्ट भी बन जाता। हाँ भाई हम तैयार तो हैं खुमस देने को, मगर इनको दें, यहां तो पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है। बल्कि ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो खुमस देते भी हैं, कहते हैं कि जहां हमें अच्छा लगेगा, हम भी तो अकल रखते हैं ना, कॉमन सेंस है, जहां हम देखेंगे कि तबलीग हो रही है, दीन का काम हो रहा, हम खुद खर्च करेंगे। खुम्स देकर भी अपने खुम्स को एक तरह से वेस्ट कर रहे हैं। बट तो आ गया ना, बहुत देर बाद आया, लेकिन आ गया कि आज की मजलिस में बहुत सारी बातें आ गई। तो जब एक मोमिन की यह हालत है, एक गदीरी की यह हालत है, एक करबलाई की यह हालत है, जहरा के नाम पे औलाद कुर्बान कर देने वाले की यह हालत है, तो अगर वो नॉन मुस्लिम के दिल में लालच आ गया तो कोई ताज्जुब नहीं है, वो बात करने लगा, क्योंकि अब सामने से प्राइस आ रही है, बात करने लगा। इसने 1.5 मिलियन का है, उसने 1.6 मिलियन का है, अब वो देख रहा है कि इसके आज बेचू। इतनी देर में रसूलुल्लाह एंटर हुए मार्केट में, पैगंबर ने उसे देखा, कहा ये क्या कर रहा है, तो मेरी चीज है, मैं खरीद चुका हूं, डन है, खाली पेमेंट करना था, पेमेंट लो, डिलीवरी दो और जाओ। एक साफ मुकर गया, कहने लगा कि नहीं, सौदा डन नहीं हुआ था, खाली बात हुई थी, मैंने कहा था बाद में डिसीजन लूंगा। पैगंबर फरमाते हैं कि तू गलत कह रहा। देखिए इस्लाम में बहुत अहम हुक्म है, करबला इसी का नाम। करबला को बहुत ही अगर हम शॉर्ट करें, समराइज करें, तो जुमला ये इस्लाम का हुक्म, न जालिम बनो न मजलूम। जुल्म करना भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जालिम जुल्म करे और तुम बस आंखें बंद करके सर झुका के हर जुल्म बर्दाश्त करो। मजलूम भी नहीं बनना है, मुकाबला करना है। जहां तक अल्लाह ने ताकत दी, मैदान करबला का सबसे बूढ़ा साहबी सईद इब्ने जुबैर, जो आजकल एक बहुत मशहूर बीमारी है पार्किंसन डिजीज, इससे मिलती जुलती बीमारी, हाथों में राशा है, हाथ कांपते हैं, ना तलवार उठा सकते हैं ना तीर, लेकिन वो भी मुकाबला करने के लिए आया और मुकाबला किया। ये नहीं कहा कि भाई मैं तो मरने के लिए आया हूं, आओ और आके मुझे मेरी गर्दन काट दो। तो ये इस्लाम का एक हुक्म है कि जालिम भी नहीं बनना, मजलूम भी नहीं। पैगंबर देख रहे हैं कि ये आदमी फ्रॉड कर रहा, आज इसको छोड़ दिया गया तो ये 10 और आदमियों से फ्रॉड करेगा, यहीं पर इसको रोक दो। ये भी इस्लाम का एक हुक्म है। मौला ने जो नहजुल बलागा आका हसन के नाम वसीयतनामा लिखवाया, उसमें एक जुमला कि माफी बहुत अच्छी चीज, मगर गलत आदमी को माफ न करना, जिसकी वजह से उसमें इतनी हिम्मत आएगी, वो जसारत करेगा, वो दूसरों पर जुल्म करने लगेगा। बाद ऐसे लोग होते हैं उनको माफ करने का मकसद है उनको और इंकरेज करना अपने जुल्म में। पैगंबर ने कहा तू गलत कह रहा। उसने फिर वही बात कही जो कॉमन सेंस, कहा कि आपका ये कहना है कि ये ट्रांजेक्शन डन हो गई थी, सौदा हो गया था, और मैं कह रहा हूं नहीं हुआ था, कोई विटनेस चीज तो उसकी है, घोड़ा उसका। अगर पैगंबर ने खरीद लिया तो इसका कोई वेटनेस होना चाहिए। अब पैगंबर ने चारों तरफ देखा, मार्केट में सारे के सारे जो बायर थे वो तो मुसलमान थे, वही लोग खड़े हुए बात कर रहे थे। पैगंबर ने देखा और कहा कि भाई तुम में से कोई मेरा विटनेस बनता है कि मैंने यह घोड़ा खरीद लिया। अब हर आदमी परेशान हुआ। देखिए कुछ लोग मुत्तकी होते हैं और कुछ सुपर मुत्तकी होते हैं। अब हर आदमी परेशान हुआ, या रसूल अल्लाह आपकी बात सही होगी लेकिन हमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जो चीज हमने देखी नहीं हम उसमें कैसे विटनेस बन जा। आखिर वही हालत हुई जो मैदान खंदक में थी कि पैगंबर ने नाम लेना शुरू किया, अच्छा तुम मेरे विटनेस बनो। नाम से भी फायदा नहीं हुआ, नहीं हम बहुत ही मुत्तकी आदमी हैं, हमने जो चीज नहीं देखी, जो जब हम वहां मौजूद नहीं थे हम गवाही नहीं दे सकते। पैगंबर भी मजे ले लेके हर एक से बात कर रहे हैं। इतने में ये खुजैमा इब्ने साबित वहां से गुजरे, पैगंबर ने रोक ली, कहा कि ऐ खुजैमा क्या तुम मेरे विटनेस बनोगे कि घोड़ा मैंने खरीदा। कहा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं ये घोड़ा आपने खरीदा, आई बेयर विटनेस। अच्छा देखिए, रसूल को एक मसला समझाना था, बात घोड़े की नहीं थी। अगर बात घोड़े की होती तो पैगंबर अब उस नॉन मुस्लिम से कहते ये आ गया विटनेस बताओ, नहीं उसको तो छोड़ दिया। जो पैगंबर का फेवर कर रहा है ना, पैगंबर ने उसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। या रसूल अल्लाह इतने बड़े मजमे में एक आपके फेवर का निकला और आप उसी के पीछे पड़ गए। कहा कि ऐ खुजैमा तुम तो थे ही नहीं, मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है, फिर तुमने कैसे गवाही दी। लोग मेरी मजलिस के बारे में भी एक जुमला कहते हैं, कहा रसूल अल्लाह कहा मुझ जैसा जाए। मौलाना हमें आपकी मजलिस इसलिए अच्छी नहीं लगती कि दूसरे लोग आते हैं वो दूसरों को बुरा कह के चले जाते हैं, आप आते हैं आप तो हम ही को बुरा कहने लगते हैं। तो आप जो आदमी आया बैठा बेचारा इतनी रात गया मालूम उसी को बुरा कहा जा रहा, कौन सुनेगा मजलिस। लेकिन अल्लाह के रसूल खुद अहमद से कह रहे, उनसे कुछ नहीं कहा, जिन्होंने पैगंबर का फेवर नहीं किया उनसे कुछ नहीं कहा, इससे कहने लगे तुमने कैसे गवाही दी। कहा या रसूल अल्लाह मैंने इसलिए गवाही दी कि ये तो घोड़े का मसला है, घोड़े की क्या वैल्यू है, आपके कहने पर बगैर देखे हम नहीं थे, सिर्फ आपके कहने पर हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें मानी। आपने कहा मैं रसूल हूं हमने माना, आपने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है हमने माना, आपने कहा जन्नत है हमने मानी, आपने कहा जहन्नम है हमने माना, आपने कहा कयामत है हमने माना, हर चीज हमने आपके कहने पर मान ली। और एक घोड़े के मसले पर हम ये आर्गूमेंट शुरू कर दे कि हम तो थे ही नहीं, आपकी बात माने तो कैसे माने। पैगंबर ने कहा अंता सुशहादत है, आज से तुम एक गवाह दो के बराबर हो, तुम्हारी गवाही एक हो मगर इज इक्वल टू टू यानी कंप्लीट गवाही है। ये इस्लाम डिमांड करता है, ये मन कुंतो मौला का मतलब है। जो रसूल ने कह दिया आंखें बंद करके मानना है, फायदा हो तो मानना है, नुकसान हो तो मानना है, उसके बेनिफिट सामने आए तो मानना है। अभी हिडन इन द फ्यूचर बहुत सारी इस्लाम की चीजें, लोग कहते हैं कि मौलाना आपकी हमने दो चार मजलिसें सुनी जिसमें कुछ साइंस वाइंस के जरिए से आपने कुछ बातें बयान की, वो अपनी जगह वक्त आएगा। जैसे जैसे जोश ने करबला के लिए कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, उसी तरह से इस्लाम के बारे में भी एक वक्त आएगा। इंसान को कंप्लीट तो होने दो, इंसान की नॉलेज हर हुक्म हर एक की समझ में आएगा, लेकिन अभी साइंस है इनकम्प्लीट, इस्लाम है कंप्लीट। इनकम्प्लीट चीज से आप कंप्लीट को कैसे समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी फ्यूचर में हैं, लेकिन याद रखिए एक वक्त आएगा हर चीज आपके सामने आ जाएगी। उस वक्त अगर ईमान लाए तो क्या फायदा, फायदा आज ईमान लाने का है कि जब हम किसी पीटर की वजह से ईमान नहीं लाते, स्मिथ की वजह से ईमान नहीं लाते, जॉन की वजह से ईमान नहीं लाते, आइंस्टाइन की वजह से ईमान नहीं लाते, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान के आंखें बंद करके ईमान लाते हैं। जो उसने कह दिया, नमाज का हुक्म दिया, दाढ़ी का हुक्म दिया, हिजाब का हुक्म दिया, मिस गैदरिंग को हराम किया, म्यूजिक की जो किस्में हराम की, शराब को हराम किया, इंटरेस्ट को हराम किया, सुअर को हराम किया, जो उसने कह दिया आंखें बंद करके हमें ईमान लाना। है, तभी तो ईमान का फायदा है, वही तो असली ईमान है, वही तो रियल ईमान है। वरना कई मिसालें मैं दे सकता हूं, लेकिन आज जरूरत नहीं। जहां इस्लाम की वो चीजें जिनके फायदे दुनिया के सामने आ गए, नॉन मुस्लिम ने भी उसको मान लिया। जब फायदा आएगा तो हर आदमी मानेगा, हर एक को फायदा चाहिए। मोमिन का तो इम्तिहान यही है, उस वक्त मानो, उस वक्त मानो जब कोई ना मान रहा हो, और उस वक्त मानो जब सिर्फ और सिर्फ रिसालत तो इमामत पे भरोसा करके मानोगे। यह है मन कुन तो मौला, यह है फहाज अली मौला। तो अब जो कह दिया, और यही सूरह निसा की आयत नंबर 64 है, और मजीद बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इसमें एक जुमला मैं बहुत अजीब कहने जा रहा हूं, जिसको आज समझाऊंगा नहीं, ये समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह कल या परसों। वो भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी पिछले 2-3 साल की मजलिसों में ये सब्जेक्ट पे बात हो गई। उर्दू जबान का मसला है, और आपकी भाषा गालिबन गुजराती है या अंग्रेजी। हमारे बुजुर्गों ने, जिन्होंने उर्दू बनाई, एक लफ्ज बहुत सोच समझ के रखा था, जो आज चेंज हो गया। आप मुझसे पूछे, मैं तो लखनऊ का रहने वाला, दुरूद भेजा जाता है, दुरूद पढ़ा नहीं जाता। लेकिन आज आप खुद अहले जबान में से भी कई लोगों को देखेंगे, और वैसे शायरी में, तकरीरों में, जिन्होंने उर्दू बनाई है उन्होंने कहा दुरूद भेजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि दुरूद पढ़िए। और आप हजरात अगर गुजराती स्पीकिंग हैं, तो एक बात कह रहा हूं, ये कोई शरई मसला नहीं है, ये मैं आपके ऊपर कोई एतराज नहीं कर रहा हूं कि नऊज़ुबिल्लाह आप कोई गुनाह करने जा रहे हैं। मेरा वो स्टाइल ही नहीं है जो गालिब के शागिर्द का है। गालिब एक बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, उनके शागिर्द के सामने किसी ने गालिब का गलत शेर पढ़ दिया। अरे वो तो जूता लेके मारने दौड़े, कहा कि क्या ये कुरान हदीस समझ लिया है कि जैसा दिल चाह उल्टा सीधा पढ़ लिया? ये गालिब का शेर है, गालिब का शेर, इसमें गलती नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई उर्दू में गलती नहीं हो, चाहे कुरान में गलती हो जाए। मैं खाली एक बात इसलिए कह रहा हूं कि ये कंट्रास्ट है। हज, हज इस्लाम की वो इबादत है जिसमें कोई चीज नहीं पढ़ी जाती। एक तल्बिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक 2 रकत नमाज तवाफ। इतना बड़ा हज, इतना मेहनत वाला हज, इतना लंबा हज, ऐसी कौन सी नमाज, ऐसी कौन सी इबादत है? नमाज मिनट्स, रोजा सिर्फ आधा दिन, लेकिन हज 5 दिन। उसके बावजूद हज में पढ़ने की कोई चीज नहीं, सिर्फ एक तल्बिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बस, और एक 2 रकत नमाज। गुजरात के रहने वाले कराची में बहुत है, हज की जब बात होती है तो कहते हैं कि हमारे वालिद हज पढ़ने गए थे। हज तो पढ़ा ही नहीं जाता, हज किया जाता। और दुरूद की जब बात होती है, दुरूद पढ़ा जाता है, जबकि दुरूद में भी यही मसला है कि दुरूद भेजा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। अगर फर्क क्या है इसमें, सूरह निसा की आयत, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजदू फी अन्फुसिहिम हरजा अभी तेरे रब की कसम, ये सब गैर मोमिन, मोमिनों को कुरान कह रहा है, ये सब गैर मोमिन, जब तक कि ये तेरे हुक्म के आगे सर न झुकाए, और जो तू कह दे इनके दिल में भी ख्याल पैदा ना हो कि क्या कह दिया रसूल। देखिए, एक तो होता है अमल ना करना, एक है नहीं अमल कर रहे हैं लेकिन दिल में शक आ रहा है कि आखिर इसका फायदा क्या, आखिर ये क्यों किया जा रहा। अमल करके भी जरा सा दिल में डाउट होता है। कुरान कहता है सुम्मा ला यजदू फी अन्फुसिहिम हरजा मिम्मा कज़ैत, तेरा हुक्म आने के बाद इनके दिल में भी जरा सी तंगी पैदा ना हो या कोई शक पैदा ना हो। वयुसल्लिमु तस्लीमा, इनका एक ही काम हो, तू हुक्म देता जाए, ये सर झुका के हुक्म को मानते जा। इसे कुरान ने मोमिन कहा है, फला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं। अब छोटी सी मिसाल दे दू, आज भी स्टिल कितनी ही ऐसी दीनदार लेडीज और बच्चियां हैं जो इस्लाम के इस हुक्म को मानती है कि अगर निकाह के मौके पे कंडीशन न हो तो डिवोर्स या तलाक का हक मर्द को है, औरत को नहीं। खुदा न करे कि हमारी कम्युनिटी में इसकी नौबत आने पाए। जर्नलाइज एक बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में यह चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जो दीन से दूर है वो तो सीधा सीधा एतराज करती है, ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा दीन है, सब मर्द को दे दिया, औरत के पास कोई अख्तियार नहीं। लेकिन मुत्तकी, परहेजगार, दीन को फॉलो करने वाली, मगर दिल में ये शक तो आता कि आखिर क्या बात है कि शौहर इतना जुल्मी किया जा रहा है फिर भी हमारे पास इख्तियार नहीं है तलाक का, उसके पास। ये वन वे कॉन्ट्रैक्ट उनकी समझ में नहीं आता। आज भी कितनी है ऐसी बच्चियां, भाई तलाक तो रेयर केस। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह की निगाह में इस दुनिया में सबसे नापसंदीदा घर वो है जहां तलाक होती है। अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा बुरा घर। लेकिन जो दूसरी मिसाल मैं दे रहा हूं कि बाप मर गए, बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा, उसके सगे भाई को डबल हिस्सा मिलेगा, दोनों एक ही बाप की औलाद है, दोनों का सेम रिश्ता है, उससे वो बाप है, ये बेटे, ये औलाद है। सिर्फ लड़का होने की वजह से वो डबल हिस्सा लेंगे, और तो कोई चीज नहीं है उसमें। तो आज भी भाई मौत तो हर घर में होती, तलाक तो रेयर केस है, ये तो रेयर नहीं है, ये तो रोजाना पेश आने वाला मसला। आज भी कितनी है ऐसी बच्चियां जो दीनदार, शरीयत का हुक्म है, अल्लाह ने कहा है, रसूल ने कहा है, मानेंगे, नहीं लेंगे ज्यादा हिस्सा, चाहे कहीं पर कोई लॉ वगैरह से उनको मिल भी रहा हो, नहीं लेंगे। लेकिन दिल में ख्याल आता है कि वाह, ये कौन सा दीन है कि जहां पे सिर्फ जेंडर के बेसिस पे वो डबल लेके जा रहा। हाँ, अगर ये कहा जाए कि उसने मां बाप पे ज्यादा खर्च किया तो उसको डबल दो। ऐसे केस भी हैं कि लड़की ने ज्यादा खिदमत की, लड़के ने पलट के पूछा भी नहीं। अब बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। कुरान ने कहा कि मोमिन होने की पहली शर्त यह है कि सुम्मला यजदू फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैत, जो रसूल ने कह दिया आंखें बंद करके मानना है, दिल को भी ऐसा बना लो। हाँ, वसवसा अलग चीज, वो तो आता है और जाता है, जाता है और आता, लेकिन बाकायदा सीरियस आदमी उसके ऊपर गौर करने लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो मोमिन नहीं। ये कुरान कह रहा और कसम खा के कह रहा, जो हुक्म देना है आंखें बंद करके मानना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी रीजन ना पूछे, लेकिन अगर रीजन ना बताया जाए या रीजन सामने ना आए तो अपने एक्शन में कमी ना करे और दिल के अंदर कोई शक पैदा ना होने पाए। और इसकी बेहतरीन मिसाल अगर आपको देखना तो करबला का वाकया। ऐसे मोमिन जो आंखें बंद करके हुक्म रसूल मान रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल या मॉडल आपको करबला में मिलेगा। कहीं पे कोई डाउट हुआ, कहीं पे कोई आर्गुमेंट हुआ, इमाम की फौज की बात कर रहा हूं, मर्द तो मर्द, औरतों तक की हालत है कि जो इमाम कह दे बस खत्म बात। एक रिवायत हमारे यहां पाकिस्तान में बहुत पढ़ी जाती है, बुजुर्ग उलमा और खुतबा से बहुत सुनी, चुनाचे उसी रिवायत को पढ़ते हुए मजलिस इख्तिताम को पहुंचा रहा हूं। लेकिन वो जो बात मैंने मजलिस में कही थी कि हां, इस्लाम के हर हुक्म का फायदा है और हर हराम का नुकसान है, अभी इंसान को बेदार तो हो लेने दो, एक बार इसकी नॉलेज कंप्लीट हो तो हर चीज को बाकी दुनिया भी मानेगी। इनकम्प्लीट है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, नॉलेज इनकम्प्लीट। हर चीज का कोई रीजन है इस्लाम में, लेकिन हर चीज हमको अभी बताई नहीं गई। करबला, आंखें बंद कर। हुसैन ने कहा ये मेरे साथ चलेंगे, फौरन तैयार हो,
और ये नहीं चलेंगे, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। किसी ऐसी फैमिली में देखिए कि सारे फैमिली मेंबर्स किसी सफर में जा रहे हैं और किसी एक को रोका जा रहा है। उर्दू में कहते हैं उसका दिल चाह रहा है, हिंदी में कहेंगे उसका मन चाह रहा है, लेकिन रोका गया तो वो रुक गया। और फिर ये भी ज़हन में रखिएगा, ये बात भी हो रही है बहुत छोटी बच्ची की। अट्ठाईस रजब, अभी चांद रात है, लेकिन कल चूंकि दो मुहर्रम की शब लगेगी कल की मजलिस, तो आका हुसैन के करबला पहुंचने के मसाइब कल पढ़े जाते हैं। आज तो हुसैन का सफर शुरू हुआ, इंशाल्लाह कल की मजलिस में हुसैन करबला पहुंचे, यानी सफर खत्म हुआ। 28 रजब हुसैन को मदीने से निकलना। एक मरतबा काफिला तैयार कराया गया और फिर हुसैन का पैगाम ज़ैनब कुबरा तक पहुंचा कि खानदान की औरतों से कह दो कि उनकी सवारियां आ चुकी हैं, इसलिए एक एक करके वो बाहर आए, सवारियों पे सवार हो जाएं और देखो मैं सबको अपने साथ ले जा रहा हूं, सुगरा को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तो हर बीवी सुगरा से मुलाकात तो करके आ जाए, लेकिन कोई बात ना करे, ऐसा ना हो कि सुगरा किसी बीवी की सिफारिश लेके आ जाए। सुगरा कमसिन भी है। हुसैन सबको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, सुगरा को नहीं ले जाना चाहते। व्हाई? कोई रीजन? कभी ज़हन में ये आता है कि शायद सुगरा लड़की थी और ये सफर बड़ी मुश्किलात का था, तो हुसैन लड़कियों को नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी, इसमें फातिमा कुबरा भी गई हैं, इसमें सकीना भी गई हैं, जब दूसरी लड़कियां जा सकती हैं तो ये भी जा सकती हैं। कभी दिल में ख्याल आता है कि सुगरा तो बीमार है, मगर जब मैंने देखा कि आगे चल के मेरा आका सज्जाद तो इससे ज्यादा बीमार होने वाला, जब ज्यादा बीमार जा सकता है तो ये सुगरा की तो बीमारी भी आखिरी स्टेज पर अब ठीक हो रही। कभी दिल में ख्याल आया कि शायद सुगरा की एज बहुत कम, लेकिन जब लिस्ट में देखा कि दो वीक का अली असगर जा रहा है, तो सुगरा अली असगर से तो बड़ी है, तो आका वजह क्या है? ये हमारे जहन में भी आया, सुगरा के जहन में भी आया होगा, लेकिन बाबा का हुक्म आ गया, सुगरा ने बाबा से कोई बात नहीं। दिल में ख्याल है कि बीवियां आएंगी, माँ भी आएगी, फूफी भी आएगी, बहनें भी आएंगी, उनमें से किसी से कहूंगी कि मेरी सिफारिश कर दे, लेकिन हर बीवी आती है, इमाम का हुक्म है, इसलिए इतना जल्दी आती है और खुदा हाफिज कह के चली जाती है कि सुगरा को मौका ही नहीं मिलता कि किसी से सिफारिश की बात कर। और जब सारी बीवियां चली गई जल्दी से मिलकर, तो आखिर सुगरा ने देखा मेरी मेहरबान फूफी सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा मेरे हुजरे में दाखिल हो गई। सुगरा को पता है कि अगर ज़ैनब चली गई तो फिर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। तो इधर ज़ैनब ने बच्ची के सर पे हाथ रखा, कहा सुगरा बेटी हम सफर पे जा रहे हैं, चंद दिनों बाद आएंगे, खुदा हाफिज। सुगरा ने तड़प के फूफी का दामन पकड़ लिया और कहा फूफी अम्मा बाबा से सिफारिश कर दीजिए, मुझे अकेला छोड़ के ना जाए, मुझे साथ लेके जाए। अच्छा, आपको मालूम है कि ज़ैनब कुबरा का टाइटल है शरीकतुल हुसैन, हुसैन के जिहाद में हुसैन की मददगार हैं। तो इस वक्त ज़ैनब हुसैन की मददगार बन के सामने आई, कहा सुगरा घबराओ नहीं, चंद दिनों की बात तो है, हम जा रहे हैं फिर वापस आ जाएंगे, तसल्ली दे रही है बच्ची को। लेकिन सुगरा तड़प की अजीब बात कहती है फूफी अम्मा मुझे पता है कि आप तो वापिस आएंगी, मेरा बाबा वापिस नहीं आएगा। नन्नी बच्ची बाप के बारे में ऐसा जुमला कह दे, ज़ैनब घबरा गई, सुगरा ये क्या कह रही है? कहा फूफी अम्मा मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन कल रात को मेरा दिल घबरा रहा था, आधी रात के बाद मेरी आंख खुल गई, सारे घर वाले सो रहे थे, मैं हुजरे से निकल के सहन में गई, मैंने देखा सहन की दीवार के साथ एक सियापोश बीबी बैठी है और बार बार कह रही है, हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन। फूफी अम्मा मैं पहचान गई, ये मेरी दादी फातिमा जहरा है जो मेरे बाबा का मातम कर रही। फूफी अम्मा मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, मुझे साथ ले चली। माँ का नाम सुना अब तो जैनब भी बेचैन हो गई। कहा सुगरा बेटी चल मैं तेरी सिफारिश करती हूँ। ये कह के सुगरा को लेके हुसैन के हुजरे में आई। हुसैन ने दूर से ये मंजर देखा। अभी जैनब ने कुछ कहा भी नहीं था, हुसैन ने रोक दिया। हुसैन ने कहा जैनब मैं समझ गया सुगरा को लेके क्यों आ रही। आपको याद आ रहा, ऐसा ही एक जुमला हुसैन ने एक बार और भी कहा। आज मदीने में 28 रजब को कह रहे हैं और कल करबला में 10 मुहर्रम की सेपहर को कहा था, जब सकीना ने कहा था चचा अब्बास आइए मैं आपकी सिफारिश करती हूँ, बाबा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है, मैं बाबा से कह के आपको मख्तल में जाने की इजाजत दिलवाऊंगी। और वहां भी हुसैन ने कहा था सकीना अब्बास की सिफारिश ना करना, लेकिन वहां जुमला कुछ और था, सकीना अगर चचा की अभी सिफारिश की बाद में चचा बहुत याद आएगा, जब तमाचे लग रहे होंगे, जब बदन पे कोड़े पड़ रहे होंगे, यही चचा याद आएगा जिसकी सिफारिश कर रही है। इंशाल्लाह वो तो 7-8 मुहर्रम की मजलिस में तफसील आएगी। आज इतनी सी बात, हुसैन ने देखा जैनब मैं समझ गया सुगरा को लेके क्यों आ रही हो, देख सुगरा की सिफारिश न करना, तेरा भाई तेरी हर बात माने मगर सुगरा की सिफारिश न। जैनब घबरा गए, कहा भैया मेरी बच्ची ने कसूर क्या किया है कि सबको ले जा रहा इसे नहीं ले जा रहा। हुसैन ने जवाब दिया जैनब तुझे पता है ना मेरे बाद क्या होने वाला। बाज उलमा तो यहां तक कहते कि मेरा मौला बचपने में जैनब को जब बहुत छोटी थी नमाज फजर के बाद मकान के सहन में लेके इतना टहला करता था कि जैनब के घुटने दुखने लगते थे। एक दिन कहा बाबा आप मुझे इतना क्यों चला रहे हैं। अली ने कहा जैनब आज मश्क कर ले, कल करबला की शाम गरीबा यही मश्क काम आएगी, जब तेरे सिवा लुटे काफिले का पहरा देने वाला कोई ना होगा। जैनब को सब कुछ बता चुके हैं मेरे मौला। हुसैन ने कहा जैनब तुझे पता है ना मेरे बाद क्या होगा, मैं अपनी हर बेटी को कूफे और शाम के बाजारों और दरबारों में बेमकना और चादर के देख लूं, लेकिन सुगरा को बेमकना और चादर के नामहरमों के दरमियान नहीं देख सकता। मौला आखिर वजह क्या है। हुसैन कहेंगे वजह ये कि मेरी बाकी बेटियां या मेरे नाना रसूल खुदा की शबी है या मेरे बाबा अली मुर्तजा की शबी है, लेकिन मेरी फातिमा सुगरा मेरी माँ फातिमा जहरा की शबी है। हुसैन फातिमा जहरा की तस्वीर नामहरमों के दरमियान सुबह और शाम के बाजारों में बेमकना हो चादर। أجركم لله ألا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. پروردگارا میرے مظلوم آقا اور میری مظلومہ شہزادی زینب کبرا اور صغرا کے ان مصائب کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، صاحبان ایمان کو روزی کے ہر امتحان سے محفوظ فرما. خداوندہ رباب کے اظہر کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت حضرت فرما. لیکن اگر تیرے دین کو ضرورت ہو تو ہم کو یہ جذبہ عطا فرما کہ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد تیرے دین پہ قربان کر دیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کر رہا ہے، پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام علماء اور مراجع، خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی اور رہبر انقلاب آقا خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
یا حسین या हुसैन। फलक पे चांद मोहर्रम का जब नजर आया, फलक पे चांद मोहर्रम का जब नजर आया, फलक पे चांद मोहर्रम का जब नजर आया, फलक पे चांद गमे हुसैन से दिल अहले दिल का भर आया, फलक पे चांद चले न जब से अली और हसन मदीने से, चले न जब से अली और हसन मदीने से, हर एक कब्र हुसैन गरीब पर आया, फलक पे चांद मोहर चर आया, गमे हुसैन मनाने को अंबिया आए, गमे हुसैन मनाने को अंबिया आए, हर एक चाक गरीबा बरहन सर आया, फलक पे चांद मोहर या फलक पे चांद मोहर, हर एक घर में बिछाई गई सफे मातम, हर एक घर में बिछाई गई सफे मातम, गमे हुसैन का मौसम सबाब पर आया, मोहर्रम का जब नजर आया, फलक पे तड़प रहे थे अतर से हुसैन के बच्चे, तड़प रहे थे अतर से हुसैन के बच्चे, किसी को रहम न प्यासों के हाल पर आया, इसी महीने में आबिद ने बेड़िया पहनी, इसी महीने में आबिद ने बेड़िया पहनी, गहन में चांद इमामत का ये नजर आया, फलक नजर आया, लबे फुरात भी प्यासे थे करबला वाले, लबे फुरात भी प्यासे थे करबला वाले, निशान फौज हुसैन लहू में तर आया, इसी महीने में दुर्रे लगे यतीमों को,
महीने में दुर्रे लगे यतीमों को,
इसी महीने में दुर्रे लगे यतीमों को, हर एक फूल लहू में भरा नजर आया। चला मैं वादा निभाने, चला मैं वादा निभाने, सलाम माँ के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम ना के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम मैं तेरा दीन बचाऊंगा ऐ मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना, हुसैन जाता है मरने, सलाम माँ के मजार, सलाम सलाम नाना के रोजे, मेरी शरीर के सफर बन के साथ चल अम्मा, सफर पे जाता हूँ कपड़े मेरे बदल अम्मा, लिबास खुल्द सजा दे, बदन पे फिर एक बार, सलाम ना के रोजे, सलाम ना के मजार, सलाम ना के रोजे, सलाम ना के मजार, दुआ करो कोई सर पे रिदा न हो अम्मा, नमाज शौक शहादत कज़ा न हो अम्मा, न आए मेरे चमन पे, सितम की गर्दो गुबार, सलाम ना दिए जलाने को नाना, तुम्हारे रोजे पर जरूर आएगी सुगरा, हर एक सामो शहर, खुदा करे रहे रोशन, सदा तुम्हारा मजार, सलाम ना सलाम ना के रोजे, सलाम के मजार, तुम्हारे जैसा है नाना ये मेरा लाल अकबर, दुआ करो न लगे इसको आसमां की नजर, लुटे न दूर वतन से, हमारे दिल का करार, सलाम ना के रोजे, सलाम तमाम फूल से बचे हैं और गर्म हवा हमारे खून की प्यासी है फौजे जुल्म दफा सफर में कोई सजर भी नहीं है सायादार सलाम ना खाना के रोजे सलाम ना हाँ एक फूल तो ऐसा है जो खिला भी नहीं न पाए पानी तो कर सकता वो गिला भी नहीं वो जिसके दहन से आती है दूध की महकार सलाम ना खाना के रोजे मेरी सकीना कहाँ और सफर के बंद कहाँ जमीन गर्म पे चलना इसे पसंद कहाँ कदम वो फूल से नाजुक वो रास्ते पुरखार सलाम ना यही है सरवर रेहान जिंदगी का सरफ कभी जियारत करबो बला कभी है नजफ इन्हीं फिजाओं में आती है शाहदी की पुकार सलाम ना माँ की नजरें ढूंढ रही है खेमे के दर से अपना चांद डूबते सूरज तुझसे पहले देख डूबा किसका चांद आओ आकाश के तारों अब तो करबल नगरी में
अब तो करबल नगरी में
देखो लहू में डूब के चमका देख कैसा नन्ना मुन्ना चांद डूबते सूरज नीर बहाया आँखों ने
नीर
सीनों में दिल डूब गए सी ए माह मुहर्रम जा पी आया माँ जब भी गगन पे निकला चांद डूबते सूर करबल है करबल अपने कर पाक पे तू इतराए जा बाग ए माँ का मदीना जिसको तरसे माँ तूने पाया اے مس کے سکینہ باندھی تھی مس اس طرح عالم میں غازی نے اس عکس پڑا تھا جب ندی پر موج سے ابرا گویا چاند ڈوبتے سور اے آہ یہ کس کے سینے پر برچی کا پھل ٹوٹا ہے کہتی ہے وہ کوٹ کی رانی کہتی خون میں ڈوبا میرا چاند ڈوبتے سور شاہ کے غم نے بخشا ہے تربت کا اجالا ہم کو ریاض اے ماتم کا یہ داغ نہیں ہے ماتم کا یہ داغ نہیں ہے مات سینے پہ ابرا گویا چاند ڈوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ ڈوبا
حسین محمد والے محمد سلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام.